احساس بصیرت. کبھی آپ ایک ننھے سے نہ نظر آنے والے خلیے تھے، یہ خلیہ تقسیم ہوا، مرکب ہوا اور گوشت کا ایک ننھا سا ٹکڑا بن گیا. بعد ازاں یہ دیکھنے اور محسوس کرنے والا انسان بن گیا. آپ بڑے ہوئے، ہر سال آپ کو ایک نیا چہرہ ملا. کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ کتنا عظیم معجزہ ہے؟ آپ نے یہ کبھی نہیں سوچا، کائنات میں ہر چیز ایک خاص پیمائش پر تخلیق کی گئی ہے اور تمام چیزوں میں ایک بے نقص توازن ہے. یا یہ کہ وہ زمین جس پر آپ ابھی چل رہے ہیں 1670 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے حرکت کر رہی ہے. کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ مختلف پودے جو زمین کو مزین کرتے ہیں کیسے تخلیق کیے گئے؟ کیچڑ والی زمین سے انسان کو لبھانے والے ذائقوں، خوشبوؤں اور رنگوں کے حامل پھل کیسے برآمد ہوئے؟ پھلوں کے چھلکے کس قدر عمدہ خول ہیں؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ کوئی آنے والی قدرتی آفت آپ کے شہر کو تباہ کر سکتی ہے اور آپ کے گھر کو ایک لمحے میں نیست و نابود کر سکتی ہے اور آپ اپنی تمام املاک کو چند لمحوں میں کھو سکتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ کی زندگی بڑی تیزی سے گزر رہی ہے، کہ ایک دن آپ بوڑھے اور کمزور ہو جائیں گے اور آپ صحت اور خوشنمائی کھو دیں گے اور موت آپ نہیں جانتے یہ کب آئے گی، لیکن دوسرے تمام لوگوں کی طرح یہ آپ پر بھی آئے گی. اللہ نے انسان کے سوچنے کی صلاحیت کو تخلیق کیا ہے. یہ تمام چیزیں صرف چند حقائق ہیں کہ انسان ان کے بارے میں سوچے. سوچنے کی انسانی صلاحیت. ہر ایک سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن شاید کہ وہ اس بات سے آگاہ نہ ہو. جب ایک شخص اپنی صلاحیت کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ ان چیزوں پر غور کرنا شروع کر دیتا ہے جن پر پہلے اس نے کبھی غور نہیں کیا تھا. اللہ نے ہر شے تخلیق کی ہے. ہم اس کو ایک خاص مقصد کے تحت دیکھتے ہیں جو کہ انسان کو دعوت دیتی ہے کہ وہ اس پر غور کرے. بے شک آسمان اور زمین کی خلقت میں، دن اور رات کے اختلافات میں، اور اس کشتی میں جو سمندر میں چلتی ہے جس سے لوگ نفع حاصل کرتے ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے اور اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلائے، اور ہواؤں کے چلنے میں اور آسمان اور زمین کے درمیان بادلوں کے مسخر ہونے میں، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو کہ عقل سے کام لیتے ہیں. ایک فرد جو کہ غور و فکر کرتا ہے دنیا کی تخلیق پر اور لامتناہی کائنات کے پھیلاؤ اور بے نقص توازن پر، وہ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے. لامتناہی خلا میں موجود ایک معلق چھوٹے سے کرہ ارض پر انسان اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کرہ ارض کو خلا سے آنے والے خطرات کا ہر لمحہ اندیشہ ہے، اور کوئی ایسا انسان نہیں جو ان خطرات سے اس کو محفوظ رکھ سکے، مثلا لاکھوں ٹن وزنی شہاب ثاقب جو کہ خلا میں گھوم رہے ہیں، اگر زمین سے ٹکرا جائیں تو زمین پر موجود حیات کی بقا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ دنیا کے لیے ایک اور مہلک خطرہ سورج پر ہونے والے ہولناک دھماکے ہیں۔ ان دھماکوں کے بڑھ جانے کی صورت میں ان سے خارج ہونے والی خطرناک شعائیں زیادہ شدت کے ساتھ زمین پر پہنچ سکتی ہیں۔ انسانی زندگی کے لیے بے شمار خطرات لاحق ہیں، صرف آسمانوں سے ہی نہیں بلکہ زمین سے بھی۔ زمین کی اوپری سطح کے بالکل نیچے ایک انتہائی گرم آگ کی تہ موجود ہے جسے ہم میگما کہتے ہیں۔ اور زمین کی اوپری سطح بہت پتلی ہے، اسی وجہ سے آتش فشاں کسی بھی وقت پھٹ سکتے ہیں اور لاوے کو زمین پر انڈیل سکتے ہیں، یا ایک شدید زلزلہ زمین کی اوپر کی سطح پر شگاف ڈال سکتا ہے۔ انسان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ ہر لمحہ اس قسم کے خطرات میں زندگی گزار رہا ہے۔ ایک انتہائی نفیس توازن سے ہماری دنیا ان تمام خطرات سے محفوظ رہتی ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں غور کرنے پر ایک فرد جان لے گا کہ اس زمین پر موجود تمام مخلوقات اللہ کی مرضی سے زندہ ہیں اور اس بے نقص توازن کا شکر ادا کر رہی ہیں جو اللہ نے تخلیق کیا ہے۔ خلا میں زمین کا مقام۔ جس طرح کی زندگی زمین پر موجود ہے، خلا اس سے بالکل مختلف ہے۔ اس لمحے جس جگہ آپ موجود ہیں، آپ سے 56 کروڑ کلومیٹر اوپر انتہائی مہلک تابکاری آندھیاں چل رہی ہیں جن کی رفتار 1,00,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، جو سورج پر ہونے والے دھماکوں سے پیدا ہوتی ہیں۔ خلا میں منجمد کر دینے والا درجہ حرارت جو کہ -273 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور ستاروں میں موجود پگھلا دینے والا درجہ حرارت جو کہ 1,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچتا ہے۔ بڑے بڑے شہاب ثاقب جو کہ انتہائی رفتار سے خلا میں گردش کر رہے ہیں۔ اب آپ اپنی موجودگی کا احساس اس لامتناہی خلا میں کیجیے۔ اس بات پر غور کرنے کے لیے سب سے پہلے موازنہ کرتے ہیں زمینی فاصلوں اور کائناتی فاصلوں کے درمیان۔ اس کائنات میں موجود قریب ترین ستاروں کا آپس میں فاصلہ 30 کھرب کلومیٹر ہے۔ ستارے جو آپ کو آسمان میں چکمگاتے نظر آتے ہیں اور آپ سے جو قریب ترین ستارہ ہے، اس کا فاصلہ 500 کھرب کلومیٹر ہے۔ اب ہم اپنی کہکشاں میں اپنی موجودگی پر نظر ڈالتے ہیں۔ ایک کہکشاں میں 250 ارب ستارے ہیں، ہمارا سورج اس میں سے ایک ہے۔ 8 سیارے سورج کے گرد انتہائی توازن اور تناسب سے گھوم رہے ہیں۔ اس پورے نظام کو شمسی نظام کہتے ہیں۔ یہ شمسی نظام 12 ارب مربع کلومیٹر پر محیط ہے اور ہمارے اس کرۂ ارض میں بہت چھوٹی سی جگہ گھیری ہوئی ہے۔ اگر ہم تصور کریں کہ زمین ایک کنچا ہے، تو سورج فٹ بال کے برابر ہوگا اور کنچے سے 280 میٹر دور ہوگا۔ ایک کہکشاں میں موجود ستاروں کی اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود 300 ارب کہکشاؤں میں ایک کہکشاں بہت چھوٹی سی جگہ گھیرتی ہے۔ خلا میں مسلسل حرکت بھی انتہائی دلچسپی کی حامل ہے۔ زمین اپنے ہی محور پر 1,670 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے گھوم رہی ہے۔ और साथ ही साथ ये 103 गुना ज्यादा तेज रफ्तारी से सूरज के गिर्द गर्दिश कर रही है। जमीन ये गर्दिश 1,08,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करती है। ये रफ्तार गोली की रफ्तार से 60 गुना ज्यादा तेज है। साथ ही साथ हमारा शमसी निजाम 200 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से वेगा सितारे की तरफ रवां दवां है। ये गैर यकीनी रफ्तार 7,20,000 किलोमीटर फी घंटा है और इसी तरह हमारी कहकशां भी हरकत में है। और जबकि हम इस इंतहाई तेज रफ्तार सफर से बिल्कुल बेखबर हैं जो हर लम्हा हम कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने बिल्कुल बेनक्स तवाजुन कायम कर रखा है जो कि हमें इस सफर का एहसास भी नहीं होने देता। क्या आप कभी इस बात पर हैरान हुए कि किसी भी लम्हे हमको इस हरकत का एहसास तक नहीं होता? इस लम्हे जबकि आप ये फिल्म देख रहे हैं, आपको जमीन की हरकत का एहसास भी नहीं हो रहा है। चाहे जबकि आप किसी पार्क में बैठे हों या आप किसी रास्ते पर चहलकदमी कर रहे हों, आपको मालूम भी नहीं होता है कि इस वक्त जमीन अपने ही महवर पर घूम रही है। लेकिन हमारी जमीन 200 किलोमीटर फी सेकंड की इंतहाई तेज रफ्तारी से सफर करती हुई एक अजीम हजम है। एक लम्हा हम 200 किलोमीटर आगे निकल चुके हैं, अगले लम्हे हम 400 किलोमीटर आगे आ गए हैं, 600 किलोमीटर। इंसानी जिस्म हमें क्या गौर करने पर मजबूर करता है? जब भी सूरज तुलू होता है, एक नए दिन की शुरुआत होती है। दरहकीकत ये एक बहुत बड़ा मौजजा है कि हर सुबह इंसान सेहतमंद तौर पर जाग सकता है। बावजूद इस हकीकत के, एक शख्स मुकम्मल तौर पर अपने हवास खो देता है जबकि वो नींद में होता है। वो एक नए दिन की शुरुआत भी उसी तरह भरपूर शख्सियत और मुकम्मल होशो हवास से करता है जैसा कि उसने पिछला दिन गुजारा था। दोबारा वो देख सकता है, सुन सकता है और बोल सकता है। हालांकि जबकि वो रात में सोता है तो इस बात की कोई जमानत नहीं होती कि वो अगली सुबह इन तमाम रहमतों से दोबारा नवाजा जाएगा। इंसानों को जरूर इस बात पर गौर करना चाहिए कि उन पर अल्लाह की बेपनाह रहमत है और इस तहफ्फुज और शऊर का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। लोगों को अपनी खामियों के बारे में जरूर सोचना चाहिए, जैसा कि अल्लाह ने सूरह निसा आयत नंबर 28 में फरमाया, इंसान तो कमजोर पैदा किया गया है। जब लोग अपने खाने पीने और पहनने के बारे में एहतियात नहीं करते तो वो बआसानी बीमार पड़ जाते हैं। एक ना नजर आने वाला नजला बुखार का वायरस ही 60 से 70 किलोग्राम के वजनी इंसान को बीमार करने के लिए काफी है और उसके पास सिर्फ एक ही मसरूफियत रह जाती है कि वो बिस्तर पर आराम करे। इसी दौरान उसके जिस्म में मुसलसल जिद्दोजहद जारी होती है जिस पर उस बीमार शख्स को कोई इख्तियार हासिल नहीं होता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डॉक्टर उसको कुछ भी कहे या करे। वो अल्लाह ही है जो उसकी ताकत और सेहत को बहाल कर सकता है। इसलिए हमें जरूर याद रखना चाहिए कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुरान में अपनी दुआ में क्या कहा, और वही है जो मुझे खिलाता और पिलाता है और जब मैं बीमार होता हूं तो वही मुझे शिफा देता है। इंसानी जिस्म में मौजूद हर तफसील गैर मामूली इल्म के जरिए तख्लीक की गई है, हत्ता के बाल। हवें पलकें एक मखसूस लंबाई से ज्यादा बड़ी नहीं होती। ये इसलिए है कि उनकी लंबाई न बढ़ना हमारे लिए बेहतर है। लेकिन हमारे सर के बाल, जो कि इंसान के खूबसूरत नजर आने का एक अहम और बुनियादी अंसर है, हमारी पूरी जिंदगी में नश्वो नुमा पाते और बढ़ते रहते हैं, और हम अपनी शख्सियत की खूबसूरती के इजहार के लिए मुख्तलिफ अंदाज में इनको बनाते और संवारते रहते हैं। अब सिर्फ इतना सोचें कि अगर हमारी पलकें बालों की मानिंद बढ़ना शुरू हो जाएं, तो क्या होगा? कौन आपकी पलकों को हुक्म देता है कि एक खास लंबाई के बाद बढ़ना तर्क कर दें? एक शख्स जो इन बातों पर गौर करना शुरू कर दे, वो फौरन ही समझ जाएगा कि हमारे जिस्म का हर हिस्सा और उसका हर मिलीमीटर एक खास डिजाइन के तहत तख्लीक किया गया है। हड्डियों की नश्वनुमा में भी एक खास रब्त और तवाजुन कायम है। इंसानी दिमाग बचपन ही से बढ़ना शुरू हो जाता है, साथ ही साथ उसकी मुनासिबत से उसकी खोपड़ी भी बढ़ना शुरू हो जाती है। अगर खोपड़ी और दिमाग की नश्वनुमा एक खास तनासुब से न हो और खोपड़ी छोटी रह जाए और दिमाग बढ़ जाए, तो दिमाग खोपड़ी के दबाव से फट जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। खोपड़ी और दिमाग एक साथ एक खास उम्र तक बढ़ते रहते हैं, और खोपड़ी दिमाग को एक तिजोरी की तरह अपने अंदर महफूज रखती है। वो हड्डियां जो एक दूसरे के साथ एक खास तनासुब और तवाजुन से नशोनुमा पा रही होती हैं, उनको कैसे मालूम हो जाता है कि उन्होंने खास हद तक पहुंचकर रुक जाना है? अगर हड्डियां मुसलसल बढ़ती रहें तो क्या होगा? मसलन, अगर पसलियों की हड्डियां एक खास हद तक बढ़कर रुक न जाएं, वो हमारे गोश्त में पैवस्त होकर तकलीफ का बायस बनने के साथ साथ जिस्म को चीरती हुई बाहर आ जाएंगी। लेकिन हड्डियों के खुलियों के मोहतात और मुतनासिब अमल से कभी ऐसा नहीं होता। हड्डियों के खुलिये हमारे जिस्म में मौजूद हर हड्डी को इस तरह ढालते हैं जैसे मुजस्मे को ढाला जाता है। वो हड्डियों के हर मोड़ तक अपना काम मुकम्मल करते हैं और बिल्कुल सही वक्त पर अपना काम रोक देते हैं। अब हमें इसके मुतालिक सोचना चाहिए, क्या हड्डी के खुलिये में इन तमाम बयान करदा बातों का इल्म, शऊर, रब्त और मुनज्जम रहने की सलाहियत होती है? उन खुलियों को कैसे इल्म हो जाता है कि कहां उन्होंने रुकना है और कहां से शुरू होना है, जबकि हमारे जिस्म की तमाम हड्डियां एक हड्डी के छोटे से खुलिये ही से वजूद में आती हैं? ये कैसे मुमकिन होता है कि कुछ नर्म होती हैं और कुछ इंतहाई सख्त? कौन उन हड्डियों को उनके काम सौंपता है? कैसे हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े एक मुनज्जम और मरबूत काम करने वाले हाथ को तश्कील देते हैं? हमारे हाथ पांव और उंगलियां बनाने वाली हड्डियां कैसे इस तनासुब को जान लेती हैं जो हमारे जिस्म को मुतवाजन रखने के लिए जरूरी होता है? इंसानी जिस्म के काम करने की सलाहियत के कमालात की बेहतर समझबूझ के लिए ये वो सवालात हैं जो हमें अपने आप से जरूर पूछना चाहिए। ये दावा कि तमाम चीजें एक इत्तेफाकी हादसे के नतीजे में वजूद में आईं, हकीकतन एक ऐसा दावा है जो किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं। ये मुमकिन ही नहीं कि वो खुलिये जो एक शख्स को वजूद में लाते हैं और वो मॉलिक्यूल जो खुलिया बनाते हैं अपने तौर पर ऐसे फैसले कर सकें। इनमें से हर एक चीज अल्लाह के तख्लीकी कमाल का जहूर है, जिसके जरिए उसने मुकम्मल इंसान को रूप दिया। एक आयत में अल्लाह फरमाता है, उन हड्डियों की तरफ देख, कैसे हमने उन्हें उभारा और गोश्त का लिबास पहनाया। हमारी ग़िज़ा हम हमें क्या गौर करने पर मजबूर करती है। अल्लाह ने इंसानों के लिए खाने और पीने की बेशुमार नेमतें तख्लीक की हैं। ये सब एक दूसरे से मुख्तलिफ जायके रखती हैं। ये नेमतें अल्लाह के राजिक होने को जाहिर करती हैं। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह वही तो है और तुम्हें पाक व पाकीजा रिस्क दिया, वही अल्लाह तुम्हारा रब है, बस बाबरकत है अल्लाह रब्बुल आलमीन। अगर अल्लाह चाहता तो इस दुनिया में एक ही खाने की किस्म होती, लेकिन इंसानों के शुक्र के लिए उसने मुख्तलिफ अनवा व अकसाम की नेमतें तख्लीक की। हमको अल्लाह की नेमतों की याद दहानी कराने के लिए खाने और पीने की हर शय में उसकी निशानियां मौजूद हैं। मसलन अक्सर फल छिलके में लिपटे हुए तख्लीक किए, ये छिलका इन फलों को गलने सड़ने और खराब होने से महफूज और साफ सुथरा रखता है और मसूर कुन और मीठी खुशबू देर तक बरकरार रखता है। नारंगी, ग्रेपफ्रूट और ऐसे ही फल जो बड़ी मकदार में विटामिन सी से भरपूर होते हैं बहुत आसानी से खाए जाने के लिए बनाए गए हैं। ये फल सर्दियों में नशवनुमा पाते हैं जब लोगों को विटामिन सी की जरूरत होती है। गर्मियों में पानी की शिद्दत से जरूरत होती है और इस मौसम में प्यास बुझाने वाले फल तरबूज, खरबूजा, आलूचा और अंगूर वाफर मकदार में मौजूद होते हैं। ये तफसीलात इस बात को साबित करती हैं कि अल्लाह ने ये फल इंसानों ही के लिए तख्लीक किए हैं। दरख्तों की टहनियों पर फलों के खिले हुए फूल और फलों से भरी हुई शाखों का नजारा भी एक खुशनुमा तोहफा है अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इंसानों के लिए। अंगूरों के गुच्छे, सब्ज और सुर्ख सेब, आलूचे। जब आप कीवी के फल को दो हिस्सों में काटते हैं तो आप उसमें नफीस और मुनक्कश डिजाइन देखते हैं। एक और फल जो अपनी हसास शक्ल से पहचाना जाता है वो है स्ट्रॉबेरी, जो कि सब्ज पत्तों के बीच सुर्ख रंग से नुमाया हो रहा होता है, बावजूद इस हकीकत के कि ये तमाम फल एक अंधेरी जमीन में से आते हैं, हर एक अपनी मुनफरिद खुशबू, जायका और खूबसूरत रंग रखता है। ये बात फिर अल्लाह के तख्लीकी कमाल और उसके लामुतनाही इल्म व दानिशमंदी का इजहार करती है। कुरान की एक आयत में अल्लाह अपनी नेमतों के बारे में गौर व फिक्र करने की तरफ तवज्जो दिलाता है, और वो वही जात है जिसने आसमान से पानी उतारा, फिर हमने उसके जरिए हर किस्म की नबातात निकाली, फिर हमने हरी बालियां निकाली जिनमें से हम गुथे हुए दाने निकालते हैं, और खजूर के शगुफों से झुके हुए फलों के गुच्छे, और अंगूर और जैतून और अनार के बागात मिलते जुलते और जुदा जुदा भी हैं। इन दरख्तों के फल लाने और इस फल के पकने पर गौर करो, बेशक इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान वाले हैं। कुदरती माहौल में निशानियां। अगर आप बाहर कुदरती माहौल में चहलकदमी करें तो आप कुछ खूबसूरत चीजें देखेंगे, रंगीन फूल, सरसब्ज और शादाब चरागाहें या छोटी छोटी चींटियां, हत्ता के एक अदना सी चींटी भी बहुत सी हैरान कुन खूबियों के साथ तख्लीक की गई है। ये छोटा सा कीड़ा पत्तों के टुकड़े काट सकता है, या अपनी जिसामत से बड़े पत्तों के टुकड़े उठा सकता है और उन्हें आसानी से उठाकर अपने बिल तक ले जा सकता है। यह अपनी जिसामत की मुनासबत से बहुत लंबे फासले तक सफर कर सकता है। ये अपना बिल पत्तों के ना खत्म होने वाले बिछौने में आसानी से तलाश कर सकता है। हकीकतन ऐसी छोटी सी मखलूक अपने आप इन चीजों का इदराक नहीं कर सकती। वो अजीम जात जो इस चींटी में इंकिशाफ करती है और राह दिखाती है वो अर-रहमान ही है। जिस तरीके कार से एक पेचदार बेल किसी सतह या शाखों पर फैलती है, हमें चाहिए कि हम इस अमल का बगौर जायजा लें। अगर इस नश्वनुमा के अमल को वीडियो से रिकॉर्ड किया जाए और इसको तेज हरकत में देखा जाए तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि पेचदार बेल कुव्वत-ए-फैसला या शऊर रखती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है अगर इसे देखें कि अगर उसके करीब कोई शाख हो तो ये उस पर फंदा डालकर उससे लिपट जाती है। बाज़ औक़ात ये बेल शाखों के गिर्द अपने आप को कई मर्तबा लपेट कर खूब मजबूत और महफूज कर लेती है। इस तरह ये तेजी से फैलती है और जब वो एक सम्प में फैलना रोक देती है तो वापस घूमती और नीचे का रुख करके नई सम्प में बढ़ना शुरू कर देती है। एक और खूबसूरत शय जो अल्लाह ने तख्लीक की है वो है फूलों की महक। मसलन गुलाब मुसलसल तेज और भीनी महक देता है जो कि चारों तरफ हर सम्त फैल जाती है। के जदीद साइंसी दौर में भी गुलाब की खुशबू का नैमुल बदल नहीं तैयार किया जा सका है। जब कभी भी तजर्बागाहों में इस खुशबू पर तजर्बे किए गए तो नतीज इंतहाई मायूस कुन साबित हुए। गुलाब की खुशबू का नैमुल बदल जब तैयार किया जाता है तो तैयार की गई खुशबू आम तौर पर बहुत तेज और तबीयत को बोझल कर देने वाली होती है या फिर मुख्तसर वक्त में मान पड़ जाती है, जबकि गुलाब के फूल की खुशबू किसी भी तरह की बेइत्मीनानी और बोझल तबीयत का बाइस नहीं बनती। हत्ता कि अगर आप गुलाब का फूल तोड़ते हैं तो इसकी खुशबू फूल के मुरझाने तक आपके साथ रहती है। पानी का कई मीटर बुलंदी तक पहुंच जाना भी एक मौजज़ा है। क्या आप कभी इस बात पर हैरान हुए कि पानी किस तरह से अजीमुल जुस्सा दरख्त की बुलंदतरीन शाखों और पत्तों तक पहुंचता है जो कि आप हर जगह देख सकते हैं। दरख्त पानी को जमीन की गहराई से कई मीटर बुलंदी तक ले जाते हैं और उन्हें ऐसा करने में किसी पंप की मदद दरकार नहीं होती। इस बेहतरीन डिजाइन की हकीकत को जानने के लिए हम इस मिसाल का बगौर जायजा लेते हैं। पानी को किसी इमारत की बुलंदतरीन मंजिल तक पहुंचाना हो तो पंप का इस्तेमाल किया जाता है। बगैर पंप या किसी मशीन के पानी निचली मंजिल तक भी नहीं पहुंचाया जा सकता, जबकि दरख्त ये काम बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं बगैर किसी पंप या मशीन के। वो किसी भी सूरत में दरख्त के आखिरी पत्ते तक पानी पहुंचाने का बंदोबस्त करते हैं। दरख्त की जड़ों और तनों में मौजूद बारीक नालियां पानी के सतही तनाव से फायदा उठाने के लिए बनाई गई हैं। जैसे ही पानी बुलंद होता है, नालियां अपने आप को सुकेड़ लेती हैं, ताकि पानी को ऊपर की तरफ चढ़ने में मदद मिले। पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे को ताकत से अपनी तरफ खींचते हैं और पानी बुलंद तरीन पत्ते तक पहुंच जाता है। ये अजीम ज़ात अल्लाह ही की है, जिसने पत्तों में शरियानी निजाम और पानी की साख में एक दूसरे के रब को तख्लीक किया। आगे दी गई कुरानी आयत के मुताबिक अल्लाह जो अर्रहमान और रहीम है, उसने इंसानों और दूसरे जानदारों की खिदमत की जिम्मेदारी दरख्तों को सौंप दी है। अल्लाह ही है जिसने जमीन और आसमानों को खल्क किया और आसमान से पानी नाजिल किया और इससे तुम्हारे लिए बतौर रिस्क फल उगाए। मौशरती जिंदगी में अल्लाह की निशानियां। जुर्म, ज़दोकोब और ताकत के बेदरेग इस्तेमाल की बेशुमार खबरें हमें टेलीविजन पर रोजाना देखने को मिलती हैं। इस जुल्म की बुनियादी वजह यह है कि कुछ अफराद अपनी जिंदगी अल्लाह के बताए हुए अखलाकी अकदार से बहुत दूर गुजारने का फैसला कर चुके होते हैं। अक्सर लोग जो अपनी जिंदगियां दीन के बताए हुए अखलाक से बेगाना कर देते हैं, वो बेरहमी के साथ दूसरों को ज़दोकोब कर सकते हैं और बिला झिझक जुर्म के मुर्तकिब हो सकते हैं। इस जुल्म का सबब यह है कि लोगों को अल्लाह का खौफ नहीं जैसा कि उन्हें होना चाहिए। वो आगाह नहीं या अपने जल्द हासिल होने वाले मुफाद की खातिर वो अल्लाह के खौफ को भुला बैठते हैं कि उन्हें अपना हिसाब किताब उसके हवाले करना है। लेकिन दीन हमें खुलूस, एतमाद, रहमदिली, ईमानदारी, ईसार व कुर्बानी और दूसरे अखलाकी अकदार की ताकीद करता है। इन अकदार के जरिए मुआशरे में अमन, तहफुज और इंसाफ कायम होता है। अक्सर हम मीडिया पर कुदरती आफात से मुताल्लिक नई नई कहानियां सुनते रहते हैं। कोई भी शख्स किसी भी लम्हे इस दुनिया में इन कुदरती आफात का सामना कर सकता है, कम से कम इस लम्हे हमारी तवक्को के मुताबिक। एक ताकतवर जलजला कहीं वकू पजीर हो सकता है, आग भड़क सकती है या कहीं सैलाब आ सकता है। वो टेक्नोलॉजी जो लोगों को तहफ्फुज का एहसास दिलाती है, एक लम्हे में कोई भी कुदरती आफत उसको नेस्तो नाबूद कर सकती है। सिर्फ एक लम्हे में लोग अपने घर खो सकते हैं, गाड़ियां या वो जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं। एक शख्स जो इन खबरों पर ध्यान देता है, उसे सिर्फ इतना गौर करना चाहिए कि वो किस कदर मोहताज है। न कोई दूसरा उसका मददगार है या दोस्त सिवाय अल्लाह के। अल्लाह इस सच्चाई को कुरान में इस तरह बयान करता है, ऐ इंसानों, तुम सब अल्लाह के मोहताज हो और अल्लाह बेनियाज और लायक हम्द है। कुरान क्या कहता है? اللہ نے قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا، ہر فرد کو انفرادی طور پر اس کی آیات پر غور کرنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ ہمیں بے شمار چیزوں پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے، مثلا وہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی تخلیق پر غور کریں۔ پس چاہیے کہ انسان غور کرے کہ وہ کس شے سے تخلیق کیا گیا ہے، وہ اچھلنے والے پانی سے خلق کیا گیا ہے۔ اللہ ہمیں زمین اور آسمان کی خلقت پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی خلقت اور رات اور دن کے اختلاف میں صاحبان بصیرت کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ جو اللہ کو اٹھتے بیٹھتے کروٹ لیتے یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی خلقت میں تفکر کرتے ہیں کہ اے ہمارے پالنے والے، تو نے یہ سب ابس پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، پس ہمیں عذاب نار سے بچا لے۔ اللہ ہمیں دنیا کی عارضی زندگی کے بارے میں غور کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور یہ دنیاوی زندگی ہے کیا سوائے کھیل تماشے کے؟ اور بے شک دار آخرت وہی تو حیات حقیقی ہے، اے کاش وہ جانتے ہوتے۔ پس جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے وہ تو دنیاوی زندگی کی پونجی ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ان لوگوں کے لیے بہتر اور باقی رہنے والا ہے جو ایمان لائے ہیں اور رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ تمام کائنات انسانوں کے لیے خلق کی گئی، اور اس نے تمہارے لیے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب کو مسخر کر دیا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم جاندار اشیاء پر غور کریں اور جو اس نے خلق کی ہیں، اور بے شک مویشیوں میں بھی تمہارے لیے عبرت ہے، ہم تمہیں ان کے بطنوں میں سے جو گوبر اور خون کے درمیان خالص دودھ ہے پلاتے ہیں، جو پینے والوں کے لیے نہایت خوش ذائقہ ہے۔ اللہ ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے آخرت، یوم حشر اور فیصلے کے دن کے بارے میں، جس دن ہر نفس ہر نیک عمل کو جو اس نے کیا اور ہر بد عمل کو جو اس نے کیا موجود پائے گا تو آرزو کرے گا کہ اے کاش میرے اور اس شیطان کے مابین باد المشرقین ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ بحث۔ ایک شخص جو غور کرتا ہے وہ اللہ کی مخلوق اور اس دنیاوی زندگی کے راز کو سمجھ لے گا، وہ ہر شے میں موجود اللہ کی صفات کو پہچان لے گا، نہ کہ انسانوں کی اکثریت کی طرح وہ ساری زندگی یہ سوچتا رہے گا کہ اس کا وجود کیوں ہے۔ وہ اللہ کے سکھائے ہوئے علم کو مضبوطی سے پکڑ لے گا اور اللہ کے احکامات پر غور و فکر شروع کر دے گا، نتیجتاً وہ اللہ کی نعمتوں کو پا کر کسی بھی دوسرے شخص سے زیادہ خوشی اور لطف محسوس کرے گا، اور وہ بے ضرورت پریشان نہیں ہوگا، اور نہ ہی دنیاوی مقاصد کے حصول میں اپنے آپ کو الجھائے گا۔ یہ صرف چند قابل تعریف چیزیں ہیں جو ایک غور و فکر کرنے والا شخص اس دنیا میں حاصل کرے گا۔ ہمیشہ سچائی دیکھنے اور سوچنے سے وہ شخص اپنی نہ ختم ہونے والی آخرت میں اللہ کی رضا، محبت اور جنت کا حقدار ٹھہرے گا۔ अल्लाह हम पर वाज़ेह करता है कि उसके बंदे सिर्फ इस तरीके से ही कामयाब होंगे। बस अपने आप को कायल रहने वाले दीन की तरफ मुतवज्जो कर ले काबिल इसके कि अल्लाह की तरफ से वो दिन आ जाए जो टल नहीं सकता। उस दिन वो अलग अलग कर दिए जाएंगे। जिस किसी ने इनकार किया तो उसका इनकार उसी के खिलाफ जाएगा, और जिन्होंने अच्छा अमल किया बस उन्होंने अपने ही लिए फलाह की राह तैयार की, ताकि वो जो ईमान लाए और अमल नेक बजा लाए वो उन्हें अपने फजल से जजा दे। बेशक वो ना शुक्र गुजारों को पसंद नहीं करता।
मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना।